हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 24। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अच्छेदोयम अध्याहेयोयम अक्लेदो अशेष एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोयम् सनातनः। अच्छेदोयम् अध्याहेयोयम् अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयम् सनातनः। अच्छेदोऽयम् अध्याहेयोऽयम् अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयम् सनातनः। अच्छेदोऽयम् अध्याहेयोऽयम् अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणो अचलोऽयम् सनातनः। शब्दों का अर्थ देखिए। अच्छेद्यो माना ना टूटने वाला, जिसको छिंदन नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता या जिसको काटा नहीं जा सकता। अयम यानी जिस चीज की बात हो रही है ना, ये आत्मा। अदाह्य ना जलाया जा सकने वाला, और अयम यानी यह आत्मा। अक्लेद्य अघुलनशील यानी जिसको भिगोया ना जा सकता, जिसको घोला ना जा सकता हो पानी में। अशोष्य ना सुखाया जा सकने वाला। एवच निश्चय ही, और आगे नित्य शाश्वत सर्वगतः सर्वव्यापी स्थान अपरिवर्तनीय अविकारी अचल जड़ अयम ये आत्मा सनातनः सदैव एक सा। अनुवाद देखिए, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्री ಪದ ಕಮಲ ಶ್ರೀ ಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀ ರೂಪಂ ಸಾಗರ ಜಾತಂ ಸಹ ಗಣ ರಘುನಾಥ ವಿತಂತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾತ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದ ಸಹಗಣ ಲಲಿತ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪೀಕಾಂತ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತಿ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನಂ ಗಾರಂಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸೂತ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯ ವಂಶಕಲ್ಪತರು ಭಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತಂ ಗದಾಧಾರಂ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಾತ ಕೀ ಜಯ ಹೋ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೀ ಜಯ ಹೋ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹಮೇ ಆತ್ಮಾ ಕೇ ಗುಣೋ ಕೇ ವಿಷಯ ಮೇ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ. ಕಲ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 23 ಮೇ ಬತಾಯಾ, ನಯನಂ ಛಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನಯನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕ ನ ಚಯನಂ ಕ್ಲೇದಯಂತಿ ಆಪೋ ನ ಶೋಷಯತಿ ಮಾರುತ. ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಶಸ್ತ್ರ ಕಾಟ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ, ಅಗ್ನಿ ಉಸೇ ಜಲಾ ನಹೀ ಸಕ್ತಿ, ಔರ್ ಜಲ್ ಉಸೇ ಘೋಲ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ, ಔರ್ ಹವಾ ಉಸೇ ಸುಖಾ ನಹೀ ಸಕ್ತಿ. अब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ये बता दिया, उसी चीज को अभी वापस बता रहे हैं आज के श्लोक में 24 में. पहली लाइन में देखेंगे ना तो वही चार चीजें, अच्छेद्योयम अध्यायोयम अक्लेद्योयम अशोष एवच, यानी कि अच्छेद्योयम इसको काटा नहीं जा सकता, अध्यायोयम इसको घोला मतलब आग में जलाया नहीं जा सकता, अक्लेद्यो अघुलनशील मतलब इसको घोला नहीं जा सकता, अशोष्य यानी कि इसको सुखाया नहीं जा सकता. वही चार चीजें जो उसमें बताई है वही चार चीजें इसमें बताई, यानी कि भगवान अब हमें इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जो जिस चीज से आपकी ये बाकी भौतिक प्रकृति जिस चीज से बनी हुई है ना, वो तत्व आत्मा जो है वो उस तत्व से नहीं बनी हुई है. जैसे अच्छेद्योयम यानी उसको काटा नहीं जा सकता. अब पृथ्वी तत्व से बनी हुई जो चीजें हैं जिसके अंदर पृथ्वी तत्व होता है, जैसे हमारे शरीर को या फिर जैसे पृथ्वी से जैसे वृक्षों से जो बनी हुई चीजें हैं उन चीजों को काटा जा सकता है. जो भी इस तरह की चीजें होती है ना जिसका पृथ्वी तत्व से कोई संबंध होता है उनको काटा जा सकता है. जैसे जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, पानी जो है वो उसमें जल तत्व है, पानी को काटा नहीं जा सकता. उसी तरह जो भी लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं उनमें जल तत्व ज्यादा, उसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है ना. उसी तरह से अब यहाँ पर यही भगवान बता रहे अच्छेद्योयम, इसको काटा नहीं जा सकता, मतलब इसके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है, ठीक है. उसके बाद भगवान ने बताया अग्नायोयम, इसको जलाया नहीं जा सकता. अब जिसके अंदर अग्नि तत्व है, जैसे जलाया जाता ना लकड़ियों को, और जिससे जिसके अंदर अग्नि तत्व है, लकड़ी में पहले से अग्नि व्याप्त है, जब उसको अग्नि में डाला जाता है तो जल जाती है. लेकिन उसी तरह से दूसरी चीज जैसे पानी को नहीं जलाया जा सकता है, उसके अंदर जल तत्व है इससे उसको जलाया नहीं जा सकता. तो यहाँ पर बताया कि अध्यायोयम, लेकिन आत्मा जो है उसमें अग्नि तत्व भी नहीं है, क्योंकि काटा नहीं जा सकता तो पृथ्वी तत्व नहीं है, और जलाया नहीं जा सकता तो अग्नि तत्व नहीं. और आगे भगवान कहते हैं अ ले दियो, उसको घोला नहीं जा सकता, मतलब वो जल तत्व भी नहीं है, क्योंकि जल तत्व जिसके अंदर होता है वो चीजें घोली जा सकती हैं, और जिसमें अग्नि तत्व जिसमें ना पृथ्वी तत्व होता है वो भी घोले नहीं जा सकते, जैसे लकड़ी को घोल नहीं सकते ना पानी के अंदर, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भगवान कहते हैं आत्मा के अंदर ये अग्नि तत्व भी नहीं है, जल तत्व भी नहीं है, और अशोष्य यानी जिसके अंदर वायु तत्व, अब उसको सुखाया नहीं जा सकता, उसको व्यापार अब नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके अंदर वायु तत्व भी नहीं, यानी कि आज भगवान हमें ये बता रहे हैं कि जो आत्मा है ना वो इन भौतिक जितने भी तत्व हैं उनसे बनी हुई नहीं है। तो ये चार चीजें भगवान ने वापस से क्लियर करके बताई, वही चीजें श्रीमद् भगवद गीता जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही इजी वे में बताई। देखो पहले भी वही चार चीजें, आज वापस से उसको डिटेल से बता रहे कि ये वो है ना भौतिक चीजों से बना हुआ नहीं है। फिर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, तो फिर अगर ये भौतिक नहीं है तो इसका मतलब है हमारी इस शरीर से या इस संसार से रिलेटेड कोई भी इसके अंदर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान बताते हैं हाँ वाकई इस संसार से रिलेटेड कोई भी क्वालिटी इसके अंदर नहीं। अब संसार में क्या है, कोई चीज भी नित्य नहीं है। नित्य का क्या मतलब है, शाश्वत, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। इस संसार में जो कुछ आया है भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम, ये अशाश्वत है, असुखम अशाश्वतम, इसके संसार के विषय में भगवान बताते। लेकिन ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा नित्य है शाश्वत है, लेकिन यहाँ संसार में कोई भी चीज नित्य है शाश्वत नहीं है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा जैसे का तैसा रहेगा और सर्वगत। अब इस संसार में कोई भी चीज एक जगह पर होती है तो वही एज इट इज दूसरी जगह पर नहीं होती है, लेकिन आत्मा हर जगह पर है, हर जगह पर रह सकती है। जैसे आत्मा अग्नि में रहती है, जल में रहती है, और पृथ्वी पर भी रहती है, समुद्र में रहती है, पहाड़ों पे, मतलब आत्मा के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर अब अग्नि में पहले कहा जाता कि अग्नि के अंदर कोई नहीं रह सकता, जैसे हमें पहले पढ़ा भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सूर्य लोक में भी प्राणी है, हर जगह पर प्राणी होते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि आत्मा हर जगह पर रह सकती है। अब जहां जिस तरह से दूसरे जैसे बच्चे का जन्म होता है पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्रिया प्रविशः उदरम, शास्त्र कहता है पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर आत्मा स्त्री के गर्भ में या स्त्री के उदर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसी हर जगह पर, यानी कि कोई हम इमेजिन नहीं कर सकते कि आत्मा कहाँ है, क्योंकि भगवान ने कहा सर्वगत, हर जगह पर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हर जगह पर आत्मा है। आत्मा के बगैर कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग ये सोच सकते हैं कि सर्वगत कैसे है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है वो जैसे रहती, अब स्थान हुए एक तो सर्वगत है कि हर जगह रह सकती है, लेकिन उसके बाद फौरन बताया स्थान, जैसे आत्मा जो है जैसे हमारे शरीर में रहती है लेकिन शरीर के हर हिस्से में आत्मा नहीं है, जैसे पांव के अंदर आत्मा नहीं है, हाथ के अंदर आत्मा नहीं, आत्मा किधर है, हृदय के अंदर है। अब ये भगवान बता रहे हैं कि भले वो हर जगह पर है लेकिन वो इतनी छोटी सी है कि वो खाली हृदय के अंदर ही रहती है, हृदय के अंदर ही उसका स्थान है, स्थाणु है। तो यहाँ पर एक कोई जैसे वैज्ञानिक होते हैं ना, जो साइंसदान डॉक्टर होते हैं, वो ये मानते हैं कि हृदय के अंदर धड़कन है जिसकी वजह से सारे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन होता है और इस तरह वो जी रहा है। इसलिए क्या होता है, अगर किसी का दिल काम करना छोड़ देता है तो वो क्या करते हैं, हार्ट चेंज करते हैं, हार्ट दूसरा मतलब कर देते हैं कि भाई उसकी सर्जरी करके दूसरा हार्ट, लेकिन वो ऐसा ही है। देखो आत्मा ड्राइवर है और हृदय सीट है, हृदय के अंदर ड्राइवर यानी आत्मा ड्राइवर बन के बैठा हुआ है। अब खाली ड्राइवर के बिना सीट बदलने से गाड़ी नहीं चलेगी, उस ड्राइवर उस सीट के ऊपर ड्राइवर भी होना चाहिए, यानी कि मरे हुए बंदे का दिल अगर किसी के अंदर डाल देंगे जिसके अंदर आत्मा नहीं होगी तो वो कभी भी जीवित नहीं होगा। उसके लिए जीवित हृदय, धड़कता हुआ हृदय जिसके अंदर आत्मा हो, उसी की आवश्यकता है कि हम उसको चला सके, उसको उस गाड़ी को वापस चलाने के लिए। तो ये हृदय सीट है, यहाँ पर स्थान यानी आत्मा रहती है, अचलम। इसके इसके बाद भगवान कहते हैं स्थान अचलम। अचलम का मतलब होता है, अभी वास्तव में अचलम का मतलब होता है जड़, यानी जो मूव नहीं करता है, जो मूव नहीं कर सकता है, एक जगह पर बंधा हुआ होता है। अब ये कैसे है, वास्तव में आत्मा सक्रिय है, आत्मा एक्टिव है, उसी के कारण तो ये शरीर एक्टिव है। अगर आत्मा निकल जाती है तो शरीर सक्रिय नहीं होता है, शरीर जड़ बन जाता है, लेकिन आत्मा एक्टिव है, सदैव चलती, सदैव कार्य करती करवाती रहती है। जीव के या शरीर के एक्टिव होने का कारण यह है कि उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा के एक्टिव होने का कारण क्या है, क्योंकि परमात्मा एक्टिव है। जब भगवान एक्टिव है तो उनसे निकली हुई, क्योंकि ये सारे गुण जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवान के अंदर होने चाहिए और ये आत्मा के अंदर भी होने चाहिए। तो असल क्या मतलब होता है, असल मीन्स कि उसका लक्ष्य एक ही है, आत्मा भगवान का अंश है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण की सेवा करना। तो अचल यानी उसका लक्ष्य कभी चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर क्या लिखा गया, अचल माना जड़, वो एक ही उसका लक्ष्य होता है। अब यहाँ पर ये समझ में आने की बात है कि अगर उसका लक्ष्य एक ही होता है, फिर इस संसार में आकर अलग अलग चीजों में क्यों फंस जाती है, अलग अलग चीजों की तरफ आकर्षित क्यों हो जाती है। उसका मेन कारण क्या है कि वो अपने इस लक्ष्य को विस्मरण हो गया, उसका उस लक्ष्य को भूल जाती है, क्योंकि भौतिक प्रकृति के जो तीन गुण हैं, जीव आत्मा तीन गुणों से बंध जाता है, लेकिन फिर भी उसका वास्तविक लक्ष्य, फिर भी वो अचल है, फिर भी वो अचल इस तरह है कि वो फिर भी आनंद के लिए कोशिश करती है। हाँ, इस संसार में अब जीव आत्मा जिस भी शरीर में बैठ जाता है, जिस भी शरीर में बद्ध अवस्था में बैठ जाता है, तो क्या करता है, आनंद के लिए कोशिश करता है। कोई शराबी शराब क्यों पीता है, आनंद हासिल करने के लिए। कोई खाना क्यों खाता है, आनंद प्राप्त करने के लिए। कोई जॉब क्यों करता है, आनंद प्राप्त करने के लिए। और आनंद प्राप्त करना उसका लक्ष्य कभी चेंज नहीं होता है। इसी तरह से देखो, अब प्रेम करता है जीव, है ना, इसका रियल उसका मकसद तो आत्मा अचल इसलिए है क्योंकि वो अपने प्रेम से कभी भी हटती नहीं, उसका स्वभाव प्रेम करना है। तो प्रेम करता है, किसी न किसी चीज से प्रेम करता है। अब ये गलत, ये उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो दूसरी चीजों में प्रेम खोजता है, लेकिन उसका मकसद वही होता है, प्रेम सेवा, प्रेम सेवा अनंत, यही उसको चाहिए होता है, कि यही उसका लक्ष्य होता है। इसके साथ साथ ये भी बात क्लियर की जाए कि इस संसार में जीव आत्मा चाहे किसी भी बंधन में क्यों न बन जाए, कृष्ण के अतिरिक्त उसका कोई कभी भी लक्ष्य चेंज नहीं होता, गोल उसका चेंज नहीं होता। जैसे कृष्ण की षडेश्वरियों को देखें, कृष्ण के अंदर छह ऐश्वर्य, क्या, सुंदरता, ज्ञान, बल, वैराग्य, धन और फेम। अब इस संसार में जीव आत्मा मतलब मनुष्य किसी के अंदर भी हो तो उनमें से ही किसी चीज के पीछे भागता है ना। मनुष्य या तो सुंदरता के पीछे भागता है, या ज्ञान के पीछे, या बल के पीछे। कुछ लोग को वो ताकत अपनी बनाने का शौक होता है, किसी को बहुत फेम हासिल करने का शौक होता है, किसी को धन हासिल करने का शौक होता है, किसी को सौंदर्य हासिल करने का शौक होता है, किसी को कोई सब कुछ छोड़ के वैराग्य को पीछे चले जाता है। लेकिन एटलीस्ट वो ये सारी खूबियां, ये सारी क्वालिटीज किसके अंदर है, कृष्ण के अंदर है। वो मांग रहा कृष्ण को है, क्योंकि जीव आत्मा अंदर बैठा हुआ है, उसका लक्ष्य कृष्ण है, तो मांग रहा कृष्ण है, लेकिन वो उसी चीज की अलग अलग फॉर्म, अलग अलग ब्रांचेस की ओर देख रहा है, उसके ट्री की ओर, मतलब जो जहां से ये ब्रांचेस निकल रही है उसकी ओर आकर्षित होने की वजह से, क्योंकि विस्मृति हो गई है तो उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, डायरेक्ट से कृष्ण की ओर नहीं, कृष्ण की ही क्वालिटीज के, कृष्ण के ही गुणों के पीछे वो पागल होता है, और एटलीस्ट वो आनंद हासिल करना चाहता है, चाहे किसी भी योनि में हो, तो इसलिए उसको अचल कहा गया। और उसके बाद सनातन, यानी कि वो कभी भी उसका जन्म नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 13.13 में, अनादि मत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, ये आत्मा की क्वालिटी है। यहाँ पर ये सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान से मिलती जुलती सारी क्वालिटीज वही है जो भगवान के अंदर है, लेकिन यहाँ पर बताया भगवान ने अनादि मत पराब्रह्म, ये लेकिन फिर भी मेरे आदीन है, और न सतन्ना सदुच्यते, यानी भगवान कहते हैं ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है मेरे आदीन है, इस भौतिक जगत के किसी कार्य से कार्य कारण से परे है। तो ये आत्मा की 9 क्वालिटीज भगवान हमें यहाँ पर बता रहे हैं क्या है, कि उस वो ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, वह शाश्वत, ना घुलाया जा सकता है, वह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी तथा सदैव एक सा रहने वाला है, सनातन है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर इसी तरह बना रहता है। यानी कि ये सारी क्वालिटी से पता चलता है कि ये भगवान का अंश है, क्योंकि भौतिक किसी संसार की चीज में तो ये सारी क्वालिटी होती नहीं है। नित्य सर्वगत स्थान भौतिक चीजें तो भौतिक तत्वों से बनी होंगी और आत्मा तो भौतिक चीजों से बनी ही नहीं है और उसकी क्वालिटीज भगवान जैसी है। तो भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो समझ में आ गया कि अणु अंश है उसी परमात्मा का, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे का ऐसा बना रहेगा। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अणु आत्मा के विषय में और ये अद्वैतवाद जो मायावादी बोलते हैं ना कि एक साथ मिलकर हो जाता है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं एक साथ मिलकर एक कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने बताया नित्य है सनातन है, ये शुरू से है, ऐसा नहीं है कि बाद में इसको कहीं से अलग किया गया, ये शुरू से है, इसका कोई आदि नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन आत्मा उत्पन्न हुई थी। आत्मा शुरू से है, नित्य है और सनातन है। तो बोला श्री प्रभुपाद जी बोलते फिर अद्वैतवाद जो है वो कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक हो ही नहीं सकता, निकला नहीं है तो बाद में ये तो एज इट इज रहने वाला है ना, क्योंकि वो कभी भी चेंज तो नहीं होगा, शाश्वत ऐसा ही है, नित्य ऐसा ही रहेगा। तो वो लोग कैसे बता रहे हैं फिर कहना उसके अंदर मिल जाएगा। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सफुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करना करता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि संसार में बहुत ज्यादा दुख होते हैं ना, क्लेश होते हैं, कठिनाइयां होती हैं, तकलीफें होती हैं, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिक कलमशों से मुक्त होकर कोई कोई लोग ऐसा चाह सकते हैं अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सफुलिंग बनकर के एक श्रृंगारी बनकर, क्योंकि भगवान का तेज होता है ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्म के अंदर निराकार ब्रह्म जो होता है ना, वो भगवान का तेज होता है। तो वो सोचता है कि कितनी मैंने कठिनाइयां सही है, अभी मैं वहां पर जाके आराम से तेज के अंदर एक सिंगारी बनकर सम्मिलित हो जाऊंगा और सुकून की लाइफ, कुछ भी करूंगा नहीं, मुझे वहां पर सेवा करनी नहीं है कुछ भी, और आराम से वहां पर जाके रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो बेवकूफी है ना, कि तुम अब जब तुम्हें फल मिलने वाला है तो तुम बोलो नहीं मैं भी फल बन जाऊं, कोई पूरा दिन जैसे एक माली ने बाग लगाया और फिर जिस दिन फल मिले तो बोला नहीं मैं भी एक फल बन जाता हूँ, मैं खाता वाता कुछ भी नहीं हूँ, टेस्ट नहीं करता हूँ, एंजॉय नहीं करता हूँ, प्रेम नहीं करता हूँ, आनंद नहीं लेता हूँ, बस ऐसे ही मैं भी एक वृक्ष या फल बन जाता हूँ। तो नहीं, वृक्ष अगर हरा पत्ते हरा पंछी जो है वो उस वृक्ष के अंदर आया है तो उस वृक्ष का मजा लेना चाहिए ना उसको। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लो, कि बुद्धिमान क्या सोचेगा कि नहीं उसके अंदर जाकर उसका आनंद लो ना, वैकुंठ लोक में प्रवेश करूंगा, भगवान की संगति मिलेगी, भगवान के साथ जाके आदान प्रदान प्रेम का करूंगा, और इसके अंदर मिल जाने में क्या मजा है। तो बेवकूफ लोग मिलना चाहते होंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धिमान लोग नहीं चाहते इस तरह, बुद्धिमान लोग भगवान की संगति चाहते हैं, भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान का आश्रय चाहते हैं, भगवान के साथ प्रेम व्यवहार करना चाहते हैं, उसके साथ मिल नहीं जाना चाहते। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, सर्वगत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। हर जगह पर जैसे हमने बात की, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जीव ना हो। तो सर्वगत का मतलब होता है हर जगह, वे जल में, थल में, वायु में, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाह हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अगर कोई सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अग्नि के अंदर चला जाऊंगा तो मैं स्वाह हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होता, शरीर, भौतिक शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन है ना, आपकी आत्मा ऐसी की ऐसी बनी रहती है और दूसरा जन्म उसको वापिस से मिलता है, जब तक कि वो भगवान के साथ, भगवान के धाम में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। ये नहीं है, क्योंकि अग्नि जला नहीं सकती है, तो उस लोक के अनुसार उसको जीव को एक प्राकृतिक शरीर मिल जाता है जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। अब इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं ना, उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, इसलिए हम देखते हैं ना सब काटे जा सकते हैं, लेकिन जो सूर्य लोक में प्राणी रहते हैं ना, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है, इसलिए वो जलते नहीं है। तो यहाँ पर बताएं तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अग्नि तत्व उनमें ज्यादा होता है, इसलिए सूर्य लोक में भी प्राणी रहते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन होता तो सर्वगता शब्द निरर्थक होता। श्री प्रभुपाद जी बोलते भगवान ऐसे बोलते ही क्यों? सर्वगता का मतलब होता है हर जगह पर, कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आत्मा ना हो। तो चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्रमा लोक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, हर जगह पर आत्मा स्थित रहती है। वो नित्य है, शाश्वत है, कभी उत्पन्न नहीं होती, सनातन है, कभी खत्म नहीं होती है, सर्वगत है, हर जगह रहेगी और स्थिर है, एक जगह पर हृदय के अंदर रहती है और अचल है, उसका गोल कभी चेंज नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज आत्मा के विषय में अधिक जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में इसलिए बता रहे हैं ताकि हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें कि हमें कभी भी क्षति नहीं पहुंच सकती। संसार में हम सब डरते रहते हैं ना कि ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये कुछ नहीं होने वाला। आपका अगर इस जीव आत्मा की कोई क्षति है तो केवल इतनी है, ये है कि हम इस संसार में मरे पड़े हैं। इस जीव आत्मा का अगर दुख है तो केवल इतना है कि वो अपने परमात्मा से दूर है। इस जीव आत्मा को अगर कोई नुकसान है तो वो सिर्फ इतना है कि वो अपने शाश्वत धाम, अपने रियल स्वरूप से यहाँ पर भौतिक प्रकृति के बंधनों में जकड़ी गई है। इस जीव आत्मा की एक ही दुख है उसका, कि उसको मुक्ति चाहिए। और मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब ये नहीं ज्योति में लीन हो जाना, उसका मतलब है कि अपने शाश्वत स्वरूप, अपने कृष्ण के साथ अपने प्रेम के स्वरूप को वापस से प्राप्त करना, ये है। तो आत्मा का दुख केवल इसमें है कि मैं कैसे भगवान की आज्ञाओं का पालन करूं, मैं कैसे उसे संतुष्ट करूं, मैं कैसे उसको प्राप्त करूं, बस यही एक दुख है उसका। इसलिए नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि हैं उनको सूत जी महाराज बताते हैं, सर्वे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदक्षसे अहेतुकीया प्रतिहिता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा को प्रसन्न, क्योंकि आप आत्मा हो तो उसको प्रसन्न करने के बारे में सोचो, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, हम आत्मा हैं ये नहीं सोचते हम आत्मा को कैसे प्रसन्न करें, ये नहीं सोचते हम, सिर्फ शरीर के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे अच्छा खाऊं, कैसे अच्छा पहनूं, कैसे अच्छा लगूं। तो ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तो सोचना ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप ये नहीं हो, ये तो जैसे भगवान ने पहले बताया वासन से जीर्ण, ये तो शरीर का वस्त्र है, केवल वस्त्र के विषय में आप सोचते रहते हो। जैसे श्री प्रभुपाद जी अक्सर एक स्टोरी सुनाते थे कि एक राजा था, उसको उसके किसी मित्र ने एक पिंजरा, उसके अंदर एक सोने का पिंजरा बहुत ही सुंदर था, उसके अंदर तोता था, वो गिफ्ट में दिया और उपहार के रूप में दिया। तो राजा को बोला कि मैं बहुत प्रेम से आपके लिए लाया हूँ। तो राजा ने क्या किया, ये तोता अपनी दादी को दे दिया। बोले दादी ये संभाल के रखना बहुत कीमती है, क्योंकि राजा ने कीमती इसलिए बोला क्योंकि उसके मित्र ने दिया था, लेकिन उसकी दादी ने क्या समझा कि ये तोता इसलिए कीमती है क्योंकि सोने के पिंजरे में। तो दादी ने बहुत उस सोने के पिंजरे की केयर की, उसको रोजाना साफ करती थी, कभी खराब नहीं होने देती थी, लेकिन तोते के विषय में सोचा नहीं, उसको खाना भी नहीं दिया। राजा जब एक महीने के बाद वापस आया तो बोला मेरा तोता मैंने आपको दिया था, तो बोला हाँ वो बहुत कीमती था ना, मैंने उसको बहुत संभाल के रखा है। आगे जाके राजा ने देखा तो तोता उसके अंदर मरा पड़ा था, क्योंकि तोते को तो कुछ नहीं खिलाया, खाली पिंजरे को साफ किया। तो उसी तरह से भगवान, हम भी बोलते हैं मनुष्य देह बहुत कीमती है, ये देह कीमती नहीं है, ये देह कीमती इसलिए है क्योंकि इस कीमती देह के अंदर हम फिर इसी को संभाल, इसी को सजाओ, इसी को पालित पोषित करो, इसी को डेकोरेट करो, इसी को सजाओ, इसी को ब्यूटी पार्लर में लेकर जाओ, इसी को रोज रोज नया मेकओवर करो कि मैं अच्छा लगूं। तो और आत्मा के विषय में नहीं सोचो कि आत्मा को क्या प्रसन्नता, किस चीज से प्रसन्नता, जिस तरह शरीर का आहार भोजन है उसी तरह आत्मा का आहार भगवत भक्ति है, कृष्ण के नाम का स्मरण करना है। तो वास्तव में हम आत्मा है, हमें अपनी आत्मा को प्रयुक्त आहार प्राप्त प्रदान करना है और प्रेम से सदैव भगवान के नाम का स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से हमारे आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।